एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, हेनरिक जिमर की फिलॉसफीज ऑफ इंडिया। ये वो किताब है जिसने पश्चिम में भारतीय दर्शन को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई पुरानी अकेडमिक किताब नहीं है। मुझे लगता है आज के समय में जब इतने सारे लोग जिंदगी के मतलब उसकी दिशा को लेके इतने सवाल कर रहे हैं, तब ये हजारों साल पुरानी सोच, ये दर्शन शायद कुछ बहुत जरूरी जवाब दे सकते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है इसकी खास वजह जिमर का अपना नजरिया है। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भारतीय दर्शन कोई दिमागी खेल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका एक असली प्रैक्टिकल मकसद है, चेतना को बदलना, जिंदगी को बदलना। हर दर्शन की एक अपनी भूमिका है, मतलब एक तरीका है और एक अपना लक्ष्य है, जो ज्यादातर मामलों में मुक्ति या मोक्ष है। ये सिर्फ जानने की बात नहीं, ये होने की बात है।
बिल्कुल, ये विचारों का म्यूजियम नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के, बदलाव के औजारों का एक जखीरा है। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जिन्होंने ये जखीरा हमारे लिए खोला, हेनरिक जिमर। हेनरिक जिमर 1990 में जन्मे, 1943 में गुजर गए। जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, दक्षिण एशियाई कला के इतिहासकार भी, पर सिर्फ ये लेबल उन पर पूरी तरह फिट नहीं बैठते, वो उससे कहीं ज्यादा थे।
ना, मतलब उनमें वो अकादमी गहराई तो थी ही, जाहिर है, संस्कृत पाली जैसी मुश्किल भाषाएं जानते थे, उन पर जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन साथ ही उनमें भारतीय अध्यात्म की एक अंदरूनी समझ थी, जैसे वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी रहे हों, महसूस कर रहे हों। और इसी वजह से वो इतनी मुश्किल लगने वाली भारतीय अवधारणाओं को पश्चिमी लोगों के लिए आसान बना पाए, वो भी बिना उनका असली मतलब खोए।
और एक और दिलचस्प बात है, वो कार्ल यूंग के मनोविज्ञान से भी काफी प्रभावित थे। यूंग जो मिथकों और प्रतीकों की बात करते हैं, तो जिमर ने भी भारतीय मिथकों को सिर्फ कहानियां नहीं समझा, बल्कि उन्हें इंसानी मन की गहरी सच्चाइयों, यूनिवर्सल पैटर्न्स के तौर पर देखा। इससे उनके विश्लेषण में एक अलग ही गहराई आती है।
दुख की बात यही है कि वो ये किताब पूरी नहीं कर पाए। 1943 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम इतना जबरदस्त था, उनके नोट्स, उनके लेक्चर्स इतने अहम थे कि उनके एक छात्र, जो बाद में खुद बहुत बड़े विद्वान बने, जोसेफ कैंपबेल, उन्होंने इसे संकलित किया, एडिट किया और दुनिया के सामने लाए। जिमर का काम वाकई में पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह है।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में? अगर बहुत संक्षेप में कहना हो तो ये समझिए कि ये वेस्टर्न रीडर्स के लिए भारतीय दर्शन के विशाल गहरे समुन्दर में उतरने के लिए गाइड मैप है। ये आपको बताती है कि बुनियादी सिद्धांत क्या है, कौन कौन से मुख्य रास्ते हैं और सबका अंतिम लक्ष्य क्या है।
बिल्कुल, और जिमर का जो मुख्य तर्क है वो ये कि भारतीय दर्शन सिर्फ पुराने जमाने के धार्मिक विश्वास नहीं है, वो इन्हें मनोविज्ञान की, मेटाफिजिक्स की बहुत एडवांस सिस्टम्स की तरह देखते हैं, जो इंसानी जिंदगी की जो बुनियादी परेशानियां है ना, जैसे दुख क्यों है, जिंदगी का मतलब क्या है, इन सवालों के प्रैक्टिकल हल देते हैं। और वो बार बार इसी बात पर लौटते हैं कि भारतीय दर्शन का असली मकसद सिर्फ बुद्धि से जानना नहीं बल्कि दर्शन करना है, यानी सत्य को सीधे अनुभव करना, जिससे चेतना बदल जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो परम स्वतंत्रता मिल सके। यही हर दर्शन की आप कह लीजिए भूमिका है, उसका तरीका है और यही उसका अंतिम लक्ष्य है, उसका नतीजा।
ये किताब ना पाठक को एक सफर पर ले जाती है। शुरू होती है भारतीय सोच की बिल्कुल बुनियाद से, धर्म क्या है, कर्म क्या है, संसार, मोक्ष, ये सब क्या है, ये वो जमीन है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। और फिर जिमर एक एक करके हमें बड़े दर्शनों की दुनिया में ले जाते हैं, वेदांत, सांख्य, योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म।
और कमाल की बात यह है कि वो ये दिखाते हैं कि ये रास्ते चाहे कितने ही अलग क्यों न लगे, कहीं बहुत कठोर तपस्या है, कहीं ज्ञान का रास्ता है, कहीं ध्यान है, लेकिन असल में ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी असली नेचर को पहचानो और दुख के इस चक्कर से बाहर निकलो। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये किताब पढ़ने वाले को अपने जीवन को, अपने सच को देखने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जिमर ने किताब को तीन बड़े हिस्सों में बांटा है और ये तीन हिस्से अपने आप में भारतीय जीवन को देखने के तीन लेवल दिखाते हैं। पहला हिस्सा है सफलता का दर्शन, सर्वोच्च लक्ष्य। दिलचस्प है ना कि शुरुआत अध्यात्म से नहीं, दुनियादारी से हो रही है।
हाँ, ये जिमर की खासियत है, वो पहले उन चीजों की बात करते हैं जो दुनियावी जीवन के अंदर है। धर्म यानी अपना कर्तव्य निभाना, सामाजिक जिम्मेदारी। अर्थ यानी पैसा, सिक्योरिटी, पावर। और काम यानी प्लेजर, ब्यूटी, इच्छाओं की पूर्ति। इनको जीवन को ठीक से चलाने के लिए जरूरी माना गया है। ये वो बेस है जिसे आध्यात्मिक यात्रा में पार करना होता है, पर पहले इन्हें समझना तो जरूरी है ना।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो देते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र कोई सपनों की दुनिया की किताब नहीं है। वो बताती है कि राज कैसे चलाना है, जासूसी कैसे करनी है, सत्ता कैसे पानी है और बनाए रखनी है। बहुत ही प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि थोड़ी कठोर बातें भी हैं उसमें। ये दिखाता है कि दुनिया चलाने के लिए सिर्फ ऊंचे आदर्श काफी नहीं होते, पावर और सिस्टम की जो असलियतें हैं उन्हें भी मानना पड़ता है। तो इस सांसारिक दर्शन की भूमिका क्या हुई? समाज और राज्य को ठीक से चलाना, और लक्ष्य भौतिक कुशलता और स्थिरता लाना।
दूसरे भाग में ले जाते हैं समय के दर्शन, मुक्ति की खोज। यहाँ फोकस एकदम बदल जाता है। अब मकसद दुनिया में सफल होना नहीं, बल्कि समय के जन्म मरण के इस गोल चक्कर संसार से बाहर निकलना है। इसीलिए इन्हें समय के दर्शन कहा है।
इसमें सबसे पहले बात आती है जैन धर्म की। ज़िमर इसे मुक्ति के सबसे पुराने और शायद सबसे रैडिकल रास्तों में से एक मानते हैं। यहाँ दुनिया को दो मूल चीजों में देखा जाता है, जीव यानी जिसमें चेतना है, आत्मा, और अजीव यानी जो जड़ है, पदार्थ। और कमाल की बात यह है कि कर्म को यहाँ कोई हवा हवाई चीज नहीं माना गया, बल्कि एक बहुत बारीक फिजिकल पदार्थ जैसा माना गया है जो आत्मा से चिपक जाता है, उसे भारी कर देता है।
है ना, दिलचस्प। और इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा पर इतना जोर है, किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना, क्योंकि हर एक्शन से कर्म बंध है। तो इस दर्शन का तरीका या भूमिका क्या हुई? बहुत ज्यादा तपस्या करना, उपवास रखना, खुद पर कंट्रोल रखना, ताकि ये चिपके हुए कर्म आत्मा से हट जाएं। और लक्ष्य, आत्मा को एकदम शुद्ध करना, कर्मों के बोझ से आजाद करके अनंत ज्ञान और सुख की स्थिति पाना, वही मोक्ष है।
इसके बाद आते हैं सांख्य और योग। ये जैसे जुड़वा दर्शन है। सांख्य थ्योरी देता है, नक्शा बनाता है, और योग उस नक्शे पर चलने का प्रैक्टिकल रास्ता बताता है। सांख्य कहता है कि ये जो पूरी कायनात है, ये दो चीजों के मिलने से बनी है। प्रकृति जो जड़ है, बदलती रहती है, एक्टिव है, एनर्जी है, और पुरुष जो शुद्ध चेतना है, शांत है, सिर्फ देखती है, साक्षी है, खुद कुछ करती नहीं।
और प्रॉब्लम तब शुरू होती है, दुख तब होता है जब ये पुरुष यानी हमारी असली चेतना गलती से खुद को प्रकृति की एक्टिविटी से जोड़ लेती है। मतलब शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं, ये सब प्रकृति का खेल है, और हम भूल जाते हैं कि हम तो सिर्फ देखने वाले हैं और हम खुद को ही एक्टर समझने लगते हैं।
यहीं पर योग आता है, जिसे पतंजलि ने योग सूत्रों में सिस्टमैटिक किया। योग का सीधा मकसद है चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन में जो लहरें उठती रहती है ना विचारों की, भावनाओं की, उनको शांत करना। इसका रास्ता है अष्टांग योग, आठ अंग है। यम, नियम या नैतिक अनुशासन है, आसन, फिजिकल पोज, प्राणायाम, सांस का कंट्रोल, प्रत्याहार, सेंसेस को अंदर खींचना, धारणा, फोकस करना, ध्यान, लगातार फोकस, और समाधि, एकदम गहरी एकाग्रता। इस पूरी प्रैक्टिस का लक्ष्य क्या है? पुरुष चेतना को प्रकृति पदार्थ मन के इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना, उसके असली शुद्ध साक्षी रूप में टिका देना।
फिर आता है बौद्ध धर्म। ज़िमर इसे जैन धर्म की कठोर तपस्या और दुनिया के भोग विलास, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का मध्यम मार्ग कहते हैं। खुद गौतम बुद्ध की कहानी भी तो यही है ना। राजकुमार थे, सब छोड़ दिया, तपस्वी बन गए, फिर देखा कि शरीर को बहुत कष्ट देने से भी बात नहीं बन रही, तो उन्होंने बीच का रास्ता खोजा।
बौद्ध धर्म की नींव है चार आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, ये सच है। दूसरा, दुख का कारण है। कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा, चाहत, अटैचमेंट। तीसरा, दुख खत्म हो सकता है। और चौथा, खत्म करने का रास्ता भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। सही समझ, सही इरादा, सही बोल, सही कर्म, सही जीविका, सही कोशिश, सही सजगता, सही समाधि। यहाँ दो बातें बहुत क्रांतिकारी हैं। एक, अनात्म का विचार कि कोई परमानेंट मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं वो बस बदलते हुए फिजिकल और मेंटल स्टेट्स का एक फ्लो है। और दूसरा, अनित्य कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
तो बौद्ध धर्म का तरीका क्या हुआ फिर? अष्टांगिक मार्ग पर चलना, माइंडफुलनेस और विजडम से अपनी इच्छाओं और इग्नोरेंस को समझना और उनसे फ्री होना, और लक्ष्य निर्वाण, मतलब इच्छाओं और अज्ञान की आग का बुझ जाना, जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। ज़िमर यहाँ हीनयान और महायान का जिक्र भी करते हैं। एक में इंडिविजुअल मुक्ति पर जोर है, दूसरे में बोधिसत्व का आइडियल है जो सबकी मुक्ति के लिए काम करता है।
और अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, शाश्वतता के दर्शन, ब्रह्मणवादी परंपरा। यहाँ फोकस उन दर्शनों पर है जो वेद और उपनिषद पर बेस्ड है, खासकर अद्वैत वेदांत। यहाँ ड्वेलिटी नहीं बल्कि अल्टीमेट यूनिटी, परम एकता की बात है।
बिल्कुल, यहाँ जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है ब्रह्म, वो एक बिना किसी रूप के हर जगह मौजूद परम सत्य, जो इस पूरे यूनिवर्स का बेस भी है और उसका एसेंस भी। और फिर वो मशहूर महावाक्य, आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्म, यानी हमारी अपनी जो आत्मा है आत्मन, वो अपने असली रूप में उसी परम चेतना ब्रह्म से अलग नहीं है, एक ही है। इस नॉन ड्वैलिटी को, इस एकता को सीधे एक्सपीरियंस कर लेना, यही इस रास्ते का परम लक्ष्य है। आदि शंकराचार्य इसके सबसे बड़े व्याख्याता माने जाते हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब एक ही हैं, तो हमें ये अलग अलग दुनिया, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें क्यों दिखती हैं? यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है, और ज़िमर इस पर बहुत जोर देते हैं कि माया सिर्फ इल्यूजन या भ्रम नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। ये तो ब्रह्म की ही क्रिएटिव पावर है, उसकी मैजिकल शक्ति है जो एक को अनेक जैसा दिखाती है। ये एक डिवाइन प्ले है, एक कॉस्मिक मैजिक शो। हम अज्ञान यानी अविद्या के कारण इस शो को ही असली समझ बैठते हैं।
फिर इस वेदांत दर्शन की भूमिका या साधन क्या है? ज्ञान और विवेक के जरिए इस माया के पर्दे को हटाना, ये पहचानना कि ये जो इतनी वैरायटी दिख रही है, यह असल में उसी एक ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। और लक्ष्य क्या है? आत्मन और ब्रह्म की एकता को रियलाइज करके मुक्त हो जाना।
और आखिर में ज़िमर तंथ की भी बात करते हैं, जिसे लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। वो इसे इनकार या सप्रेशन का रास्ता नहीं बताते, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का मार्ग बताते हैं। तंत्र कहता है कि शरीर को, इंद्रियों को, दुनिया की एनर्जीज को, यहाँ तक कि जिन्हें हम नेगेटिव मानते हैं, जैसे गुस्सा या इच्छा, उन्हें दबाओ मत, बल्कि उन्हें ही आध्यात्मिक जागृति के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करो। यहाँ की विधि है एनर्जीज का कुशल इस्तेमाल, और लक्ष्य है शिव जो स्थिर चेतना है, और शक्ति जो डायनामिक एनर्जी है का मिलन, यानी इसी जीवन में, इसी दुनिया में रहते हुए मुक्ति या दिव्यता को पाना, दुनिया से भागना नहीं, दुनिया को ही साधना बना लेना।
वाह, ये तो मतलब भारतीय दर्शन के पूरे लैंडस्केप की एक कमाल की यात्रा हो गई इस पूरी चर्चा से। कुछ बड़े और जरूरी संदेश या थीम्स निकल कर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी बात जो ज़िमर बार बार कहते हैं, वो है भारतीय दर्शन का प्रैक्टिकल होना। ये सिर्फ सोचने की चीज़ें नहीं हैं, ये ज़िंदगी बदलने के तरीके हैं। हर दर्शन दुख की वजह बताता है और उससे निकलने का रास्ता भी। हर एक की एक साफ भूमिका है, एक तरीका है और एक साफ लक्ष्य है, जो कि मुक्ति है।
दूसरी बड़ी बात है विविधता में एकता। हमने देखा कितने अलग अलग रास्ते हैं, कोई तपस्या का है, कोई ध्यान का, कोई ज्ञान का, कोई भक्ति का, कोई कर्म का, कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन ज़िमर दिखाते हैं कि इन सब के पीछे मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण का एक ही बड़ा लक्ष्य है। मंजिल एक ही है, रास्ते कई हैं जो अलग अलग मिजाज के लोगों के लिए फिट बैठते हैं।
तीसरा, दुनियावी सफलता और आध्यात्मिक खोज के बीच का टेंशन या बैलेंस। ज़िमर दिखाते हैं कि भारतीय परंपरा ने जीवन के चार पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जरिए इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ये नहीं कि या तो ये या वो।
चौथा, मिथक और मेटाफिजिक्स का गहरा कनेक्शन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज़िमर कहते हैं कि भारत में मिथक सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, वो गहरे फिलोसॉफिकल सच को कहने का एक पावरफुल तरीका है। शिव का नाचना, विष्णु के अवतार लेना, देवी की शक्ति, ये सब गहरे आध्यात्मिक आइडियाज के सिंबल हैं। मिथक जो हैं, वो दर्शन को सूखा नहीं रहने देते, उसमें रस भरते हैं।
पांचवा, माया का कॉन्सेप्ट। रियलिटी एक डिवाइन प्ले है। ये सोच कि दुनिया भगवान का खेल है या सपना है, ये हमारे देखने के नजरिए को बदल सकती है। दुख तब होता है जब हम इस खेल को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और अपने असली साक्षी रूप को भूल जाते हैं। जागने का मतलब है खुद को इस नाटक के दर्शक या सपने देखने वाले के रूप में पहचानना।
और छठा, चेतना की इम्पोर्टेंस। लगभग सारे भारतीय दर्शन इस बात पर सहमत हैं कि जो बाहरी दुनिया है वो हमारे मन का ही रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन है, इसलिए असली बदलाव, असली खोज बाहर नहीं अंदर करनी होती है। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है।
ज़िमर की कुछ बातें ना सच में दिमाग में अटक जाती हैं। किताब क्योंकि नोट्स से बनी है तो सीधे कोट करना थोड़ा मुश्किल है, पर उनके कुछ मुख्य आइडियाज का सार कुछ इस तरह है जो उनके पर्सपेक्टिव को साफ करते हैं।
पहला, वेस्ट में धर्म, फिलॉसफी और साइंस अक्सर अलग अलग डिब्बों में देखे जाते हैं, पर भारत में ये हमेशा एक साथ जुड़े रहे हैं। भारतीय दर्शन सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये जीने मरने का सवाल है, मोक्ष पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका। ये सीधे सीधे दर्शन की भूमिका और लक्ष्य पर जोर है।
दूसरा, भारतीय दर्शन का पहला मकसद कोई लॉजिकल सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक नाव की तरह काम करना है जो मुसाफिर को संसार की नदी पार कराकर मुक्ति के किनारे तक ले जाए। कितना जरूरी नजरिया है ये। दर्शन खुद मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक टूल है।
तीसरा, माया पर। माया सिर्फ इल्यूजन नहीं बल्कि कॉस्मिक मैजिक है, उस परम जादूगर की आर्ट है जो एक को अनेक दिखाती है। दुनिया भगवान का सपना है। माया में फंसना मतलब सपने को ही सच मान लेना। जागना मतलब ये महसूस करना कि तुम ही वो सपने देखने वाले हो। ये माया की कितनी पॉजिटिव और गहरी व्याख्या है।
और चौथा, हीरोइज्म की नई परिभाषा। भारतीय अध्यात्म का असली हीरो वो योद्धा नहीं जो बाहरी दुनिया जीतता है, बल्कि वो योगी या तपस्वी है जो अपने मन को जीत लेता है। असली युद्ध का मैदान अंदर है और असली जीत सेल्फ रियलाइजेशन है।
ये अंदर की दुनिया की इम्पोर्टेंस बताता है। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि आज की हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें ये हजारों साल पुरानी बातें हमारे किस काम की हैं? क्या ये सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद आज इनकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। जैसे जीवन में बैलेंस के लिए चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आइडिया, ये हमें याद दिलाता है कि काम, पैसा, रिश्ते और अपनी इनर ग्रोथ, ये सब जिंदगी के जरूरी हिस्से हैं और इनमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। यह हमें जिंदगी को टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरी तस्वीर की तरह देखने में मदद करता है।
या फिर दुख को समझने और कम करने के लिए बौद्ध साइकोलॉजी, ये समझना कि हमारी इच्छाएं और हमारी अटैचमेंट्स ही हमारे दुख का कारण है, आज के कंज्यूमर कल्चर में कितना रिलेवेंट है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस, सही बर्ताव और सही सोच डेवलप करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है।
और मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए योग का रास्ता तो खैर आज पूरी दुनिया अपना रही है। आसन, प्राणायाम और ध्यान आज के स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी में मन को शांत करने, फोकस बढ़ाने और एक अंदरूनी ठहराव पाने में कितने मददगार हैं।
ज़िमर हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, ये चेतना का विज्ञान है,
माया का सिद्धांत भी। अगर हम जीवन में जो कुछ हो रहा है, सक्सेस, फेलियर, इन सबको एक डिवाइन लीला या एक प्ले का हिस्सा समझें, तो शायद हम उन्हें थोड़ा कम पर्सनली लेंगे, है ना? इससे चीज़ों को ज़्यादा हल्केपन से, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से देखने में मदद मिल सकती है, शायद ईगो थोड़ा कम हो सकता है।
और जैन धर्म के अहिंसा का प्रिंसिपल, सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस नहीं बल्कि अपने विचारों और शब्दों में भी हिंसा से बचना, ये हमें न सिर्फ दूसरे इंसानों के लिए बल्कि सारे जीवों और नेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव और जिम्मेदार बनाता है। आज के एनवायरमेंटल क्राइसिस के समय में इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। तो इस पूरे ज्ञान गोष्ठी से मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि फिलॉसफी वाकई ज़िंदगी बदलने वाली ताकत बन सकती है, अगर उसे सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि जिया जाए। ज़िमर हमें दिखाते हैं कि भारतीय परंपराओं ने चेतना को समझने, दुख से डील करने और एक गहरी रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए कितने अलग अलग और कारगर तरीके, भूमिका डेवलप किए हैं जिनका एक तय लक्ष्य है।
और मेरे लिए ये बात कि सच या मुक्ति तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड हाईवे नहीं है, भारत ने अलग अलग तरह के लोगों के लिए कई रास्ते, कई पगडंडियां बनाई हैं और सब अपनी जगह सही हैं। ये जो विविधता है, यही इसकी खूबसूरती है। और ये भी कि असली सफर तो अंदर का है, खुद को जानना और अपने मन पर मास्टरी हासिल करना, यही सबसे जरूरी स्किल है। रास्ता चाहे कोई भी चुने।
हेनरिक ज़िमर की फिलॉसफीज ऑफ इंडिया सच में भारतीय मन और आत्मा को समझने की एक चाबी है। ये पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए रेलेवेंट और जिंदा बना देती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की चेतना में ग्रोथ की कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं और मुक्ति सिर्फ कोई पुराना सपना नहीं बल्कि सही समझ और अंदरूनी कोशिश से हासिल की जा सकने वाली एक अवस्था है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है, अगर ये सारे दर्शन चेतना की क्लैरिटी और एक्सपेंशन पर इतना जोर देते हैं तो क्या हमारी अपनी पर्सनल और कलेक्टिव लाइफ की प्रॉब्लम्स का असली हल भी बाहरी बदलावों से ज्यादा चेतना के अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन में ही छिपा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।